ओम शांति। भट्टियों का ये बहुत ही सुंदर अवसर होता है कि हम मधुवन में आते हैं, और उससे भी सुंदर अवसर होता है कि मधुवन के जो गुप्त रतन हैं उनके अनुभव सुनने को हमें मिलता है। तो ऐसे ही हमारे बीच में आज हमारे आदरणीय तुलसी भाई जी हैं, बहुत ही गुप्त पुरुषार्थी बाबा के अनमोल रत्न, बहुत ही सीनियर भाई साहब का थोड़ा सा परिचय देना चाहेंगे। जो आप जैसे पहले जो सीढ़ियां होती थी, कैसेट्स होती थी, तो उन कैसेट की बाबा के सारे कैसेट बनाना अव्यक्त बाप दादा का, फिर गीतों का, तो इसकी जो शुरुआत की वो हमारे आदरणीय तुलसी भाई जी ने की। क्योंकि विशेषतः जो विदेशी लोग थे, जब भारत में विदेशी लोग आते थे और जब वो चले जाते हैं तो उनको कोई ऐसा साधन नहीं होता था कि वो दोबारा बाबा की मुरली को, उसकी आवाज़ दोबारा सुन सकें। बहुत लोगों के जब ऐसा विचार आया तो भाई साहब ने ये सेवा शुरू की। धीरे धीरे वीडियो रिकॉर्डिंग, तो मल्टीमीडिया की जो सेवाएं हैं मूल रूप से उसको स्वरूप देना हमारे आदरणीय तुलसी भाई जी ने शुरू किया। लौकिक में आप एक ग्रेजुएशन करने के बाद इलेक्ट्रिशियन हैं और अजमेर से हैं। बहुत ही बाल्यकाल छोटी सी अवस्था में आप सेंटर पे समर्पित हो गए थे, फिर दीदी ने आपको यहाँ पे मधुबन में रहने की छुट्टी दी, और आज भी तुलसी भाई आप सब जानते हैं जो डिजिटल सेवाएं शुरू होती हैं, यूट्यूब पे एक चैनल है उस पर पुरानी पुरानी जो भी इनके पास रिकॉर्डिंग है वो लोगों को डाल के हमें लाभान्वित करते रहते हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हम भाई साहब से उनके अनुभव सुनेंगे। भाई साहब, जैसे आज हमारे इंटरव्यू का टॉपिक है बचपन के दिन भुला ना देना। बचपन हम सब जानते हैं, चाहे बहुत सुंदर होता है, विशेष होता है, लौकिक हो अलौकिक हो, ज्ञान का भी बचपन हम सबको मेमोरेबल होता है। हमारा पुरुषार्थ एकदम नया नया होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आज के टॉपिक पे आप स्टार्ट लीजिए।
ओम शांति। युगों में पुरुषोत्तम युग, जिसको महान युग कहा जाता है, यही एक समय है जब हम पूरे कल्प के लिए रिकॉर्डिंग करते हैं ना। जैसे भैया ने बताया ना कि सीडी रिकॉर्ड करते, तो इस हमारा भी यही पार्ट पूरे हम सब का, केवल मेरा ही नहीं, हम सब का ये पार्ट पूरे साइकिल में चलते है। 5000 वर्ष पूरा हम जितने भी यहाँ बैठे हैं आपस में कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में जरूर आसपास रहे होंगे, संग रहे होंगे, तभी हम यहाँ पहुँचे हैं, अदरवाइज यहाँ पहुँच नहीं सकते थे। तो हम सबका सौभाग्य कि हम पूरा कल्प बाबा के साथ पाठ बजाते हैं, ब्रह्मा बाबा के साथ, और आपस में भी मिलके पाठ बजाते हैं। और उसमें भी जब पुरुषोत्तम संगम युग आता है तब हम एक दूसरे को उस रूप से पहचानते हैं। पूरे कल्प में शायद इतने उस रूप से नहीं पहचानते होंगे जो अभी हम उस जिस भाव से सच्चाई से पहचानते हैं कि हम आपस में कितने नज़दीक वाली आत्माएं हैं। और जब बाबा के बनते हैं तो पहले पहले हमें स्वयं का परिचय मिलता है, स्वयं अर्थात आत्मा का परिचय। वैसे तो दुनिया में आत्मा के ऊपर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं 84 जन्मों में पाठ बजाने वाली आत्मा हूँ, ऐसा शायद कोई नहीं समझता होगा। अगर लौकिक में जब तक हम रहे तब तक तो लोगों को यही डर था कि हम ये शरीर छोड़ के पता नहीं गधा बनेंगे कि घोड़ा बनेंगे कि कुत्ता बनेंगे, पता नहीं क्या बनेंगे। जब किसी की मृत्यु होती थी उसमें जब दीपक जलाते थे तो जब दीपक हटाते थे समय अनुसार तो उसके नीचे देखते थे किसका शेप बनना है, हाथी के पाँव का शेप बनना है या घोड़े के शेप पाँव का शेप बनना है, ऐसा समझते थे कि वो उस योनि में जाके जन्मा होगा। तो ये सारी भ्रांतियाँ जैसे ही हम बाबा के बने, जैसे ही आत्मा का परिचय मिला, कितनी बड़ी भ्रांति हमारी खत्म हो गई और कितना हमें हिम्मत आ गई कि हम जब ये शरीर छोड़ेंगे तो हम आत्मा शरीर छोड़ के दूसरा शरीर भी मनुष्य शरीर ही लेंगे। दूसरा पाठ हमें पढ़ाया गया परमात्मा का, बहुत जन्मों से हमारी प्यास थी परमात्मा को मिलने की, उनका परिचय जानने की, और वो परिचय के लिए हम कहाँ कहाँ भटके होंगे, लेकिन परिचय नहीं मिला जब तक स्वयं बाबा ने आकर अपना परिचय नहीं दिया। तो बाबा का परिचय पाते ही बहुत सारी चीजें हम पा लेते हैं, जैसे हम गाते हैं ना, तुम्हें पा के हमने जहाँ पा लिया है। तो वास्तव में दुनिया में तो गीत मात्र गाते हैं, लेकिन हमने सचमुच जहाँ पा लिया। अगर हम बाबा को नहीं पाते तो हम आपस में मिल नहीं पाते। पूरे विश्व के हम बचपन में स्लोगन शाउट करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन वो फीलिंग्स नहीं थी, हम ऐसे स्लोगन शाउट करते थे। लेकिन जैसे हम बाबा के बने, बाबा का परिचय मिला, तो हम उस भाव से सोचने लगे और सच में हम आपस में भाई भाई की वो फीलिंग्स में रहने लगे। तीसरे दिन हमें परिचय मिला माँ का, पहले दिन स्वयं का, दूसरे दिन पिता का, तीसरे दिन माँ का। बहुत सारे भाई बहने इस माँ के परिचय को इतना अच्छी तरह नहीं समझे होते हैं। ब्रह्मा माँ, जिसके द्वारा ही शिव बाबा हमें ज्ञान देते हैं, और तो कई लोगों को इस माँ की वैल्यू नहीं होती, या उसको पूरी तरह समझे नहीं होते हैं, या हम उनकी आवाज़ को नहीं पहचाने होते, या उनके भाव को नहीं पहचाने होते हैं। तो वो मैं कहूँगा कि अगर आप में से भी किसी ने अच्छी तरह ब्रह्मा माँ को नहीं समझा है, तो किसी न किसी तरीके से किसी के द्वारा, या किसी बहन के द्वारा, या पुरानी टीचर के द्वारा, या पुराने भाई बहनों के द्वारा माँ का परिचय जरूर अच्छी तरह समझ लें, अर्थात ब्रह्मा माँ कैसे है और कैसे उनके द्वारा हमें प्यार मिलता है, कैसे हमें वो पालना मिलती है। जब तक हम ब्रह्मा माँ को नहीं पहचाने हैं, तो हम बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें सर्व संबंध बाबा से जोड़ने हैं, प्यार पालना चाहिए, तो हमें ब्रह्मा माँ की पूरा परिचय होना चाहिए। अदरवाइज जैसे दुनिया में होते ना सिंगल पेरेंट बच्चे, ऐसा हो जाएगा नहीं, माँ की प्यार नहीं पाया है तो इधर वो ड्राई जीवन होता है। आगे चल के भले उनके पास अच्छे अच्छे ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो मानसिकता है, जो व्यवहारिक जीवन है, वो बहुत ड्राई होता है। तो क्योंकि उन्होंने माँ का पालना ली नहीं होते, और ऐसे बच्चे आगे चल के कहीं ना कहीं प्यार के चक्कर में फिसल भी जाते हैं, क्योंकि उनको प्यार मिला नहीं होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम माँ के प्यार को भी अनुभव करें। उसके बाद तो आप जो कोर्स में कई बातें समझते हैं, लेकिन जैसे मैं कहूँगा कि जैसे बचपन में टीके लगवाने का आजकल फैशन है ना, ये इस चीज़ के टीके लगवाना जरूरी है, इस चीज़ के टीके लगवाना जरूरी है बचपन में, वो बड़े होकर वो चीज़ें वो टीके असर नहीं करते अगर बचपन में नहीं लगाए तो। तो ऐसे ही अभी थोड़े दिन पहले जयंती बहन अपने लंदन के क्लास में बता रहे थे कि बहुत सारे बच्चे क्लास में आए हैं जो जूम से निकले हैं। आपके आप में से भी लॉकडाउन में कोई बच्चे बने इस लॉकडाउन के पीरियड में?
सर,
तो ऐसे बच्चों ने कोर्स तो किया है लेकिन टीके नहीं लगवाए हैं, अर्थात जो हमारे नियम मर्यादाएं हैं तो वो पूरी तरह अच्छी तरह नहीं समझे होते हैं। मोहिनी बहन न्यूयॉर्क वाले बता रहे थे कि वो जूम के एक मीटिंग में बैठे थे, तो उन्होंने इंटरेक्शन किया, क्योंकि मोस्टली क्या होता है वन वे चलता है, लेकिन उन्होंने इंटरेक्शन किया तो उन्होंने से पूछा जो नए बच्चों से कि आपको मालूम है कि सेलिब्रेसी बहुत जरूरी है? उन्होंने कहा कि हमें तो किसी ने बताया नहीं। आपको मालूम है कि अन्न की शुद्धि बहुत जरूरी है? तो किसी ने बताया नहीं। तो मोहिनी बहन ने कहा कि शायद उन्होंने टीचर ने ये सोचा होगा कहीं भागंती ना हो जाए इतना जल्दी बताने से, इसलिए पूरी तरह नहीं बताया होगा, लेकिन ये नियम हमारे बहुत जरूरी हैं। तो ये एक तरह से टीके का काम करते हैं, जो बचपन में अगर नहीं लगे ना, तो बाद में इन चीज़ों की पालना करना या इन चीज़ों को फॉलो करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इतना जीवन बिना पालना के कर रहे थे, बिना मर्यादाओं के कर रहे थे, तो बाद में बड़े होकर इन मर्यादाओं को पालना करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जिन्होंने इन चीज़ों को नहीं समझा है या किसी ने नहीं बताया है, तो स्वयं भी मेहनत करें समझने का, और हमारे जो बड़े भाई बहने हैं वो भी उनको मदद करें इन चीज़ों को समझने के लिए, ताकि क्योंकि जितनी जितनी हमारी शुद्धता होगी, जितना जितना हमने ज्ञान को अच्छी तरह समझा होगा, जितना जितना हमें निश्चय का टीका लगा हुआ होगा, मुझे याद है कि जब मैं कोर्स पूरा हुआ 10-12 दिन के बाद हमें पालू दादी जी ने बोला कि दादी दीदी के नाम पर एक पत्र लिखो कि मुझे निश्चय है कि ये भगवान का कार्य है, भगवान पढ़ा रहे हैं। कभी कभी बाबा भी साकार मूल्य में कहते हैं कि गीता का भगवान ने पर आपने समझाया है तो उनसे लिखवा लो। तो ये लिखवाना भी एक तरह से टीका है। मैं कहूंगा कि आपको भी भले कोई भी नहीं पूछा हो तो अपने नोटबुक पे आज की तारीख में भी लिख लेना चाहिए कि मुझे ये निश्चय है कि ये ईश्वरीय कार्य है, परमात्मा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें जो ज्ञान दे रहे हैं उसी से स्वर्ग की स्थापना होनी है और मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है, मुझे उसमें एक्ट करके अच्छा रोल लेना है, है ना। तो इस चीज को मैं कहूँगा यही बचपन में बहुत जरूरी है, इसलिए कहा कि बचपन के दिन भुला ना देना। तो अगर जिन्होंने ये चीजें नहीं की हैं तो अवश्य करें।
जी सर, आजकल तो ऐसा है कि बचपन में बहुत सारे टीके बचपन में ही लगते हैं भाई साहब, है ना। तो धारणाओं के बहुत सुंदर पॉइंट आपने बताया भाई जी। आप सबने देखा है जब अव्यक्त बाप दादा थे तो फ्रंट रूम में माइक वाले और कैमरा वाले रहते हैं, और भाई साहब तो शुरू से ही पहले ऑडियो संभालते थे फिर वीडियो, तो सबसे नजदीक तो अव्यक्त बाप दादा को आपने देखा है भाई साहब। तो हम जानना चाहते हैं कि जैसे आप पहले माइक देने जाते थे बाबा को, तो आपको कैसे पता, मतलब कोई विशेष अनुभूति होती थी, कैसे पता चलता था कि ये भगवान है?
ये तो पहले भी कई बार मैं बता चुका हूँ कि जब हम और चीजों और बातों से हटके इवन आपस में भी एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे का ओरा हम महसूस कर सकते हैं। तो जब भी कोई ट्रांस मैसेंजर ट्रांस में जाता है तो वो जब बैठते हैं तो शुरू में योग में बैठते हैं, लेकिन बाबा जब उनको खींच लेते हैं अर्थात तो जब वो ट्रांस में चले जाते हैं तो थोड़ा अंतर आता है। जो पहले उस आत्मा का ओरा था वो डल होके कम हो जाता है, मतलब और जब कोई मैसेंजर वापस आता है तो वापस वो ओरा आ जाता है। तो कई ट्रांस मैसेंजर जब जाते हैं या वापस आते हैं तो उनकी बॉडी शेक करती है, लेकिन कईयों का नहीं भी शेक करता, लेकिन वो ओरा से आप महसूस कर सकते हैं अगर आपका उस भाव से ध्यान है, मानो और बातों से हटके आप उनको देख रहे हैं सिंपली, और बहुत आप योग में चढ़ गए हैं तो भी शायद आपको नहीं देखे ध्यान नहीं दिए उस बात पर, लेकिन केवल आप देखते रहेंगे हल्के रीति से तो आपको महसूस होगा। और यही चीज बाप दादा के पद्रमणि के समय भी होती है, हालांकि अंतिम समय पे तो हमारे दादी जी दादी गुलजार जी स्वयं भी बाप समान बन गए, तो बहुत ही जैसे समानता आ गई बाप दादा में और दादी गुलजार के चेहरे में भी। लेकिन जब शुरू में काफी समय पहले जब आप देखेंगे दादी गुलजार के फोटोज पुराने बहन में बैठी हैं, दादी गुलजार के फोटो और अब एक बाप दादा के फोटो में आपको बहुत रात दिन का अंतर दिखाई देगा। और इवन यहां तक महसूस होता था कि ये चेहरे में जैसे पुरुष है, ये जो स्त्री का चेहरा है वो हटके उसमें पुरुषत्व आ गया है ना, वो चेहरे में की जो एक्सप्रेशन है यहाँ तक आप महसूस करेंगे। मुझे याद है कि 77 या 78 में हम लोगों ने एक ही स्लाइड शो बनाया था, उस समय तो वीडियो होता नहीं था, तो स्लाइड शो बनाया था द डे ऑफ ब्रह्मा, अभी भी मौजूद है कहीं ना कहीं। तो उसमें हम लोग लास्ट में वो दिखाए थे कि कैसे दादी गुलजार जब ट्रांस में जाती हैं और बाप दादा आते हैं तो वो चेहरे से ही महसूस होने लगता है कि बाप दादा आ गए हैं। तो एक चेहरे से भी महसूस होता था, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जैसे भैया ने बोला कि माइक्रोफोन देने के लिए आपको कन्फर्म कैसे हो कि बाप दादा आ गए हैं, तो मैं ओरा पे ध्यान देता था उस समय, क्योंकि ओम शांति भवन में काफी समय के बाद हम लोग कैमरा रखना शुरू किए तो क्लोजअप हमें दिखते टीवी में दिखता था, लेकिन मेडिटेशन हॉल में स्टूडियो हॉल में जब तक हम बाप दादा की पद्रमणि को देखते आए हैं तो उस समय ओरा से ही महसूस करते थे। ऑफकोर्स बाद में बाप दादा आने के बाद आंखें खोल के दृष्टि देना शुरू करते हैं, लेकिन बाप दादा आ गए हैं ये महसूस ओरा से भी होता था हमें, तो वो बहुत अच्छे अनुभव भी होते थे और ये एक तरह से किसी आकर्षण भी था बाप दादा के लिए, बाप दादा के पास में। अब एक बाप दादा के अगर मैं थोड़ा और बताऊं तो कई चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं पुराने भी हैं, जो बाप दादा की मुरली सुन के उठ जाते थे। तो मुरली तो हम दोबारा भी पढ़ सकते थे, लेकिन आप देखेंगे मुरली के बाद जब बाप दादा मिलते हैं तो कैसे ही मिलते हैं, कैसे किसकी विशेषता हैं बताते हैं, उनको कैसे दृष्टि देते हैं, कैसे टोली देते हैं, कैसे अपना समय यूज करते हैं। मीन्स जो मधुरवाणी ग्रुप गीत गा रहा है या कोई और एक्टिविटी चल रही हो, कोई केक की तैयारी कर रहा है, कोई कैंडल लाइटिंग की तैयारी होती है, तो बाप दादा उस समय क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारे भाई बहनों का अनुभव होगा कि जो वैसे स्टेज पे शायद नहीं जा पाते, लेकिन उनको बाबा ने उस समय इतना दूर होते हुए भी उनको दृष्टि दी, है ना। वो ये चीज बाप दादा ने को हमने खास देखी कि उन्होंने अपने समय का उपयोग, जो भी मिला समय, उसका पूरा पूरा उपयोग बच्चों को दाता बन देने में किया, चाहे वो दृष्टि से, चाहे महावाक्यों से, चाहे टोले से। मुझे याद है कि 1999-2000 में बाप दादा डायमंड हॉल में स्टेज से नीचे उतर के ऑडियंस में आके पूरा ऑडियंस में दृष्टि और ब्लेसिंग देने के लिए उतरे। तो मैं उस भाव से भी देखता था या औरों को भी इंस्पायर करूंगा, और अभी भी मैं ये कहूंगा कि आप उन वीडियोस को भी देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, उसमें से बहुत कुछ फीलिंग्स होंगी। तो बाप दादा कैसे चलते हैं, कैसे बाप दादा देखते हैं, हालांकि बहुत सारी एक्टिविटीज और भी चल रही होती है ना उसमें, हम जैसों का शायद ध्यान चला जाए ना उधर। समझो मैं किसी से फोन कर रहा हूँ, फोन पे बात कर रहा हूँ, तो सामने वाले आवाज नहीं कर रहे हैं लेकिन खुसर कर रहे हैं, तो मेरा ध्यान चला जाता है ना कई बार। लेकिन बाप दादा कैसे अपना कार्य करने में मशगूल होते हैं कि आसपास क्या हो रहा है, कौन किसको क्या बोल रहा है, नहीं बाबा को जिसको देना है वो देते ब्लेसिंग से, कैसे घूमते। और कभी कभी मैं बोलता हूँ बहनों को भी कि या तो बाबा बन के दृष्टि दो, या तो दादी बन के बाबा का हाथ पकड़ के दृष्टि दिलाओ, क्योंकि उसमें ये भी दिखता था कि कैसे दादी बाप दादा का हाथ पकड़ के आगे बढ़ा रहे हैं, चल रहे हैं, और बच्चों को बोल रहे यहाँ बैठ के बैठो बैठो सबको दृष्टि मिल रहेगी, है ना। तो जो दादी का एक्सप्रेशन है उसमें, या जो बाप दादा का एक्सप्रेशन है, कैसे बाप दादा चलते हैं, तो ये सारी चीजें भी महसूस करनी है। अगर हम उस चीज को नकल भी करेंगे ना, उनको इमिटेट भी करेंगे, तो भी हमें बहुत फायदा मिलेगा कि कैसे बाप दादा का स्वरूप है ना, उसका स्वरूप को अपन नकल कर, जैसे बचपन में हम हमारे नाना जी कैसे खाते हैं, मुंह कैसे चलता है, उसको अपन नकल करते थे। तो बाप दादा को भी अगर हम नकल भी करेंगे तो भी बहुत सारा फायदा उसमें से मिलेगा। और स्टेज पे भी जब हम जाते हैं या बाप दादा को खिलाते हैं तो कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं ना, और कैसे सबको संतुष्ट करते हैं, जो भी आता है सामने उनको कुछ न कुछ देने का। तो ये चीजें बहुत, जो जिसको अनुभूति कहें, और इसको देखने का भी मजा है। तो हमारा सौभाग्य कि हमने जैसे वो गीत है ना, कुछ भगवान को खाते हुए देखा, भगवान को डांस करते हुए देखा, भगवान को ऐसा ये एक्शन करते हुए देखा, तो वो हमारा भाग्य है कि हमने उस चीज को देखा व्यक्त बाप दादा के रूप से, और विशेष रूप से दादियों के द्वारा बाप दादा साकार बाबा के जो अनुभव हैं वो सुन के। तो साकार बाबा के साथ में जो दादियां सुनाती हैं, समझो दादी जी सुनाते हैं कि हम बाप दादा से बैडमिंटन खेलते थे ना, ऐसे जहां भी शांति स्थान है वहां वो ग्राउंड होता था, हम बाबा के साथ ऐसे खेलते थे। तो विशेष रूप से जब मनोहर दादी जी सुनाते थे तो उस भाव में आके सुनाते थे। तो जैसे अभी भैया कंट्रोल ट्रैफिक अपने कमेंट्री कर रहे थे ना कि मैं सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर में बाप दादा से मिलन मना रहा, तो आप सब उसका अनुभव कर रहे थे, भैया बता रहे थे लेकिन आप सब उसका अनुभव कर रहे थे। सिमिलरली जब मनोहर दादी हिस्ट्री सुनाते थे, बाप दादा की कोई कोई बातें सुनाते थे, क्योंकि विशेष रूप से वो हिस्ट्री की टीचर भी रहे हमारे यज्ञ में बाप दादा की कहानी सुनाने में। और उस समय क्या होता था कि जब कोई टीचर का क्लास रखते थे तो दादी मनोहर इंदिरा स्वयं टीचर का परिचय देने के लिए बैठे रहते थे, जब तक टीचर आए तब तक रूह रूहान करते रहते, दो बातें बाबा की जरूर सुनाएंगे। तो मुझे लगता था कि वो कॉमेंट्री दे रहे हैं और मैं वो अनुभव कर रहा हूँ, बाप दादा के साथ खेलने का है तो खेलने का अनुभव है, बाबा ऐसे खाते थे तो मुझे लगता था मैं बाबा के साथ ऐसे खा रहा हूँ, बाप दादा घुमाने ले जाते थे तो मुझे लगता था मैं भी उसमें बाबा के साथ हूँ, या बाप दादा ले जाते थे बाबा की पहाड़ी पर जिसको अभी बाबा की पहाड़ी बोलते हैं, वहाँ ऐसे ऐसे योग कराते थे, तो मैं महसूस करता था, वो जैसे मेरे लिए कमेंट्री होती थी। तो ये मेरा भाग्य था कि मैं दादियों से बाबा के बारे में इतना अच्छी तरह सुन लिया, जो मुझे कभी ये नहीं महसूस होता है कि मैं साकार बाबा को नहीं देखा। शायद मनोदा जी कभी कभी बोलते थे हंसी में कि हम तो साकार बाबा के साथ रहे ना, तो हमको इतना ध्यान नहीं रहा कि हम बाबा माना ये बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन जब हम सर्विस में निकले तो हम बताते थे कि हम ब्रह्मा बाबा के साथ रहे, ब्रह्मा, तो लोग बोलते हैं ब्रह्मा मान, आपको मालूम है ब्रह्मा माना क्या, तो हम ब्रह्मा के साथ रह रहे, ब्रह्मा माना क्या है, यज्ञ पिता है वो, आप उनके साथ रहे, हाँ हम उनके साथ रहे, तो बोले कि तब हमें महसूस तो हुआ कि हमारा इतना भाग्य ऊंचा था कि हम ब्रह्मा बाबा के साथ रहे, हमने उनसे पालना ली, उनके साथ खेला, उनके साथ हंसा, उनके हर बात में सहयोगी बने, या उन्होंने अधिकार से हमने ये पालना दी, पालना भी दी, प्यार भी दिया, शिक्षाएं भी दी, तो उस चीज की महसूसता तब आई जब हम सेवाओं में गए और जिन औरों को हमारी इम्पोर्टेंस महसूस हुई, तो मैं कहूँगा कि वो चीज़ हमने भी अनुभव की कि भले दादियों ने उनके साथ रहे, लेकिन जब दादियाँ सुनाती थी तो मुझे वो अनुभव होते थे कि मैं बाबा के साथ खेल रहा हूँ, हंस रहा हूँ, या जो भी शिक्षाएं बाबा हमें दे रहे हैं, या अंगुली पकड़ के घुमा रहे हैं, या तो हम बाबा के साथ खेल कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, या तो जो भी बहुत सारे बहनों के अनुभव हैं, विचित्र अनुभव हैं, आप सुनते होंगे पूर्वजों की, आजकल तो बहुत सारी कहानियाँ अवेलेबल हैं, तो बहुत सारे अनुभव इस प्रकार के भी रहे।
आपने वैसे देखा होगा अभी तो आपदा की पर्सनल मीटिंग्स, चाहे वो दादियों के साथ हों, विदेशियों के साथ हों, बाबा न केवल मिलते थे, कई बार जैसे शिक्षा देना, शक्ति देना, ये होता था उनका। हम भी कई बार जैसे स्टेज पे बाबा के सामने जाते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस होता है कि दृष्टि लिया तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ भी, यू नो, जैसे डेड साइलेंस हो जाता है, बस मैं और बाबा, वो मोमेंट जैसे रुक जाता है। तो आपके कोई ऐसे अनुभव, यू नो, बस बाबा ने आपको सुखदेव टाइटल दिया, तो आपके भाई सब कोई ऐसे अनुभव?
पर्सनली जब मैं बाबा से मिल रहा हूँ, मेरे से जो बातें हैं, ऐसे तो रोज ही मिलना होता था, इन द सेंस जब माइक्रोफोन रखने जाते हैं तो अपना अपना थोड़ा लाभ तो ले लेते हैं, बाबा के पास में गए हैं तो उनसे वाइब्रेशंस, उनकी दृष्टि लेने का लाभ तो ले लेते हैं, लेकिन जो बातें हैं उसमें सबसे पहले मैं जब बाबा के सामने आया, हिस्ट्री हॉल का समय था, उस समय अजमेर से हम दो ही कुमार आए थे, तो बाबा के सामने गए, बुलाया गया और बाबा ने फीट किया, उस समय थोड़े से होते थे तो ये सब चीज़ें बहुत फैमिली में अनुसार चलती थी, ये नहीं होता था कि छोटा है कि बड़ा है कि नया है कि पुराना है, तो बाबा ने
उस समय पे माइक लगाते थे?
नहीं, उस समय मैं सेंटर से आया था।
नहीं, माइक बाबा के सामने लगाते थे जैसे?
हाँ, तो अब एक बाबा के लिए माइक्रोफोन लगाना ही पड़ता था क्योंकि बहुत सॉफ्ट वॉइस है ना, तो माइक्रोफोन हटाया गया था जब मैं गया था, तो उस मूल्य के बाद बुलाया गया आगे, तो बाबा ने फिट किया, फिर मुझे कहा दिया गया दीदी मनमोहिनी द्वारा कि आप बाबा को खिलाओ, तो खिलाया और बाबा ने कहा महावीर कुमार हो, तो ये बाबा की जैसे ब्लेसिंग था, महावीर कुमार हो, और उसके बाद कई बार मधुबन निवासी बनने के बाद बाबा से कई बातें हमारे सामने आए, तो एक दो बार की बातें हैं कि बाबा ने कहा कि सुखदेव हो, तो बाप दादा ने कहा कि बाप के महावाक्य औरों तक पहुंचाना ये सबसे बड़ा सुख देना है, तो सुखदेव हो, तो वो टाइटल बाप अगली बार जब मधुबन निवासी मिले एक दो साल बाद, तो भी बाप दादा ने उस चीज़ को रिपीट किया, अच्छा सुखदेव आ गया, सुखों के सागर के सुखों के लहरों में लहराते सुखदेव बन, सुख देते रहो, इस प्रकार के तीन बार बाबा ने सुख के सुखदेव के ऊपर ही अगेन रिपीट किया। तो मधुबन निवासी हंसी में बोलते थे, आपको तो बाबा वही बोलने वाले ना, अगली बार आप समझ लो वही बोलने वाले हैं, तो हम ही आपकी जगह हम चले जाएंगे। तो इस प्रकार हंसी करते हैं। लेकिन बाप दादा ने कुछ वरदान ऐसे दिए हैं, इसमें एक ये था कि मोल्ड पावर के आधार पर आगे बढ़े हो, सो इसी मोल्ड पावर के आधार से रियल गोल्ड बन विश्व में प्रत्यक्ष होंगे। और लास्ट में जो एक 2002 में बाप दादा ने या उससे पहले एक बार बोला है कि हर कदम में बाप की मदद का अनुभव कर आगे बढ़ रहे हो, ऐसे भी हर कदम में बाप दादा की मदद का अनुभव कर आगे बढ़ना, क्योंकि जहाँ बाप दादा की मदद है तो वहाँ सब चीज़ें सहज हो जाती हैं। तो बाप दादा और हम साथ में हैं या उनकी मदद है तो हम निश्चिंत हैं कि बाबा हर कार्य करा ही रहा है और कराता रहेगा जैसे भी। ये मेरे अपनी मीटिंग्स की बातें हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि औरों के साथ बात करते हुए, इसमें कई बातें हैं, कई विशेषताएं हैं, कई विषय हैं। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ही भोपाल भाई का बर्थडे था। भोपाल भाई हमारे अनन्य भाई हैं, एक यज्ञ के पुराने भाई हैं जिन्होंने शांति बन के एक्चुअली जमीन लेने के निमित्त बने, और वो भी एक टचिंग कैचिंग पावर के हिसाब से। तो मैं उनकी बर्थडे था तो उनकी विशेषता को याद कर रहा था। तो बाबा ने उनको कहा, बाबा से कभी मुलाकात में उन्होंने कहा कि बाबा कुछ काम अटक गए हैं। तो बाबा ने बोला कि आपका निश्चय, आपके निश्चय का जो फोर्स है ना, आपके निश्चय के नशे के फोर्स से जो अटकी हुई चीज़ है ना वो निकल जाएगी, इसलिए निश्चिंत होकर आगे बढ़ते रहो। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो बाबा ने, जिसे समझ में आता है कि हमारे पीछे बाबा है, हम दिख रहे हैं या साइन कर रहे हैं या हम बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे हर कार्य में बाबा है, बाबा का यज्ञ है, हम बाबा के सहयोगी हैं, तो बाबा करण करावन हर करा रहा है वो चीज़ पे। और केवल हमें निश्चय बहुत जरूरी है, निश्चय रख आगे कार्य करते रहना है, हाँ जी करके आगे करना है। ऐसे ही किसी को, जैसे कोई उसी रात की मीटिंग है जो मधुबन निवासियों की मीटिंग है, कभी कभी आपने राजू भाई के मुख से सुना होगा कि जो ये वरदान आते हैं मुरली में वो उस समय के हैं, उस समय की शुरुआत है जब मधुबन निवासी पूरी रात बाप दादा से मिले थे और लगभग 110-115 भाई बहने भाई मिले थे। इतना तक के भाई बहनों के लिए समय नहीं बचा था इतना, क्योंकि पूरी रात मिले, सवेरे 7-8 बजे तक मिले, उसके बाद बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। तो उसमें बहुत सारी लंबी लंबी बातें हैं और लंबी लंबी दृष्टि और वरदान हैं। आपको चांस मिले तो ज़रूर सुनना, देखना, और अगर देखने का समय नहीं है तो पढ़ना, PDF फाइल है अवेलेबल, तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको मधुबन निवासी, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिशियन है, तो उसको बाबा ने कहा अच्छा कनेक्शन जोड़ते हो तो क्या याद रहता है, ये याद रहता है कि मैं बाबा से भी कनेक्शन जुड़ा हूँ। जैसे कोई रथवान है तो बाबा ने उनको कहा है कि जब आप ड्राइविंग की सीट पर बैठते हो तो मंजिल याद है, इतने भाई आज अभी मुझे यहाँ जाना है, तो आपको वो मंजिल याद रहती है। तो जैसे ही चाबी हाथ में डालो तो वो मंजिल भी याद करो, मुझे कहाँ, मेरा लक्ष्य कहाँ है ना, जो लक्ष्य की तरफ गाड़ी ले जाती हो तो लक्ष्य, मेरा लक्ष्य क्या है वो भी याद रखो। ऐसे हमारे देव भाई हैं किचन में, तो बाबा ने उनको कहा कि अच्छा देव तो देव मना है देवता देने वाला, तो हमेशा ही किचन में भी क्या करते हो, देने की सेवा करते हो ना। तो इस प्रकार बाबा ने उनकी नाम, उनकी सेवाएं, उनकी विशेषताएं, उनकी फ्यूचर, उनके पास्ट, सबको उस समय जैसे महसूस करके देख के उनको वरदान दिए हैं। आपको भले आपको लगेगा कि भाई के लिए, लेकिन मैं कहूँगा कि विशेष रूप से जो हमारे रिट्रीट सेंटर हैं जहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं, तो वो अपने डिपार्टमेंट संबंधी कुछ मीटिंग्स अपने भाई बहनों को दिखाएंगे, तो उनको भी लगेगा कि ये जैसे मेरे लिए है ना। जैसे कोई, जैसे मैंने बताया किचन वाले को ऐसे बोला, ऐसे गाड़ी चलाने वाले को ऐसे बोला, या इलेक्ट्रिशियन को ऐसे बोला, ऐसे हर एक की विशेषता है। स्वामी भाई उस समय कारपेंट्री में थे, अभी शरीर छोड़ दिया, लेकिन नहीं उनको बाबा ने बोला कि अपना जब फर्नीचर बनाते हो तो ये याद रहता है कि मैं फ्यूचर का फीचर डिजाइन कर रहा हूं। फर्नीचर के बनाते समय अपने फ्यूचर के फीचर्स डिजाइन करने की मन में आता है, तो बाबा ने उस प्रकार से वरदान दिए जो उनको न केवल उनको छप गए हैं लेकिन हम सुनने वालों के भी कई बार वो चीजें याद आती हैं। और वो हम कोई भी बातें हैं कि डिसीजन लेना होता है या कभी ऐसी बात में अपने आप को उमंग दिलाना होता है तो हम इन बातों को अवश्य याद दिलाते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा बचपन के दिन भूला ना देना, तो उसमें आगे की लाइन है आओ चले हम गाते हंसते, तो कहीं भी गाते हंसने वाली जो उमंग उत्साह वाली बातें कमी नहीं आनी चाहिए हमारे जीवन में। हम आगे बढ़ते रहें, हम उमंग उत्साह में रहें, ये हमको हमने बाप दादा से भी सीखा, दादियों से भी सीखा, दादी जी प्रकाश मणि जी से सीखा। आपने देखा होगा जिन्होंने दादी जी को, तो भले वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, बड़े थे, लेकिन कई बार उन्होंने ये कहा चलो अपन बारिश में भीगने चलते हैं, तो उमंग उत्साह वाली बात है ना, कोई नहीं तो बोलेगा अरे नहीं नहीं वो तुम नहीं जाना वहां, सब लोग होते हैं देखेंगे कैसे क्या समझेंगे, लेकिन उन्होंने उमंग उत्साह में लाने के लिए हर प्रकार की जो पालना दी। और ऐसे नहीं कहा कि जैसे वो बड़े हैं या तो जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे रिजर्व हो जाते ना कई भाई बहने, ऐसे नहीं, हम नेचुरल जीवन जीत के आगे बढ़ते रहें और औरों को बढ़ाते रहें। मुझे याद है थोड़े दिन जब दादी के दिनों के अभी पुण्यतिथि का दिनों था, तो जयंती बहन अपने अनुभव सुनाए थे कि जब वो महाबलेश्वर थे, महाबलेश्वर में दादी जी के साथ में वो रहते थे, तो चंद्रू बहन और जयंती बहन और दादी, तो दादी के एक साथ एक साइड में चंद्रू बहन थी, एक साइड में मैं थी, तो दादी ने हम दोनों का हाथ पकड़ा और जब ढलान आती ना तो वहां दौड़ लगाई। तो इस प्रकार से दादी हमेशा एक नेचुरल जीवन लेके उमंग उत्साह में लाते हुए हम बच्चों को आगे बढ़ाए, ये भी हमने दादियों से भी सीखा।
दादी की बात आई तो बोलते हैं कि दादी की परख शक्ति बहुत गहरी थी, आत्मा को देख के यू नो परख लेती थी। कई बार हमने देखा ना डिसीजंस की भी बात आती है, तो दादी के सामने अगर खड़े हो जाते ना तो दादी जैसे स्कैन कर लेती थी, तो वैसा कोई अनुभव कैसा?
मैं कहूँगा कि दादी जी की पहली विशेषता ये थी कि सबके लिए प्यार, बाबा का बच्चा है माना, कोई भी बाबा ने उसको स्वीकार किया है तो मुझे उसको प्यार देना है, पालना देनी है, ये उनकी विशेषता रही। तो ऑटोमेटिकली है कि किसी को भी उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, किसी से गलतियां भी हो गई, समझो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास मेसन थे, मेसन का काम करते थे लेकिन साकार बाबा के समय से ही करते थे, ऐसे एक माली थे जो साकार बाबा के समय से ही करते थे माली का काम,
कुछ तो, कुछ लोग अभी भी हैं पांडवों में बाबा के समय के रहते हैं।
हाँ, तो ऐसे ऐसे ऐसों को जिन्हों को बाबा ने साकार बाबा ने रखा या दीदी मनमोहिनी ने रखा, उनके संबंधित कुछ ऐसी कंप्लेंट भी आएगी ना तो स्वयं डिसीजन नहीं लेते थे, उनके लिए बाप दादा से पूछ के लेते थे ताकि उनको ये नहीं लगे कि ये मानो जैसे बाबा के बच्चे थे या दीदी के बच्चे थे इसलिए उन्होंने ऐसा बिहेव किया, कभी भी नहीं। तो दादी हमेशा दाता रूप में देने वाली रही, चाहे कैसा भी आत्मा हो क्या भी हो, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि परख शक्ति की आपने कही, तो जब मुझे कुछ देना है तो इसको क्या सूट करेगा वो आता है ना। जब जैसे मान लो कोई आप आए तो आपकी टेक्नोलॉजी विशेषता है तो आपको उस भाव से देंगे क्योंकि आप को प्रति प्यार है, जिसके प्रति प्यार होता है तो हम उनकी पसंद का सोचते हैं या कहाँ वो सेट होगा उनका सोचते हैं। अगर हम पहले से ही माइंड मन बना देते हैं कि इसको ये करना चाहिए तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, जैसा जो आपने कहा परख शक्ति का। परख शक्ति तब आती है जब हम डिटैच होते हैं, हम हल्के रहते हैं, हम शुभ भावना वाले होते हैं, हमें किसी के प्रति न एक्स्ट्रा ममत्व होता है न घृणा होती है, तब हमारी परख शक्ति अपने आप ही आती है।
सब दादी के बारे में सुनते हैं लेकिन आपने दीदी को भी देखा है, दीदी विशेषतः आपको मधुबन में लेके आए, उन्होंने आपकी सेवा यहाँ पे स्टार्ट की। तो दीदी के बारे में कुछ उनकी विशेषताएं, जैसे हमने सुना है वो धारणाओं में बहुत मुरली में नंबर वन, तो उनकी कुछ ऐसी विशेषताएं।
वैसे दीदी के बारे में बहुत भाई बहनों ने सुनाया है, मैं उन चीजों को रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन जो मैंने मुझे पर्सनल मिला है दीदी से वो ये है कि हम कहीं भी संग दोष में नहीं आएंगे और लोगों की बातों में नहीं आएंगे। जो हमें क्लियर नहीं है हम तो बड़ों से पूछेंगे, लेकिन किसी की बातों में आके हम डिसीजन नहीं लेंगे या उनके संग में आके हमारे जीवन उनके अनुसार नहीं बनाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि समझो आप नए नए हैं और तो जो पुराने हैं तो आपको उमंग उत्साह दिलाने के बजाय कभी कभी डिस्करेज भी कर लेते हैं। कोई उमंग दिलाते नहीं भी हैं, कभी कभी कोई डिस्करेज भी कर देते हैं, नहीं नहीं अरे तुम ऐसा नहीं करो, मैंने भी ऐसे किया था कि वैसे हुआ गया था कि ये ऐसा होता है कि ये होता है। लेकिन स्वयं की डिसीजन हो या तो फिर बड़ों से पूछ के करें तो वो फायदा होता है उसमें। तो इस प्रकार से किसी ने भी कुछ भी कहा तो मैंने उसको इजी लिया, क्योंकि दीदी की छत्र छाया हमारे ऊपर थी। तो जब बड़ों की छत्र छाया होती और आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे या आपको पीछे नहीं हटाएंगे तो आप निश्चिंत रहते हैं, और कुछ भी ऐसा होता है तो इजी रीति से दीदी से या जो भी निमित्त हैं आत्माएं उनसे आप पूछ सकते हैं, तो आपको एक दिशा निर्देश मिल जाता है। तो ऐसे ही दीदी का मैंने पहले भी सुनाया है कि दीदी ने अचानक मुझे दिल्ली भेजा था, एक माता की ऑपरेशन था तो उसके लिए। तो ये भी दीदी ने एक तरह से सिखाया कि कैसे हम हाँ जी करें तो उसका फल मिलता है। जैसे मैं अभी भैया को अप्रिशिएट किया कि भाई शैलेंद्र भाई ने भैया को बोला कि आप ये श्लोक सुनाओ, तो ही वॉज रेडी टू शेयर। तो अगर वो कह अरे नहीं मैं अभी थोड़ी सुनाऊंगा, मैं थोड़ी रेडी हूँ इन चीज़ों के लिए, लेकिन हो सकता है अभी थोड़ी वो श्लोक रोज पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने कहा और उन्होंने सुना दिया प्यार से, भले कैसा भी कुछ भी हो। तो ऐसे दीदी का जो मैनेजमेंट था कि हाँ जी वाला पार्ट, और ये चीज़ साकार बाबा के समय से ही भी चलती आई है। मुझे याद है कि जानकीदास जी ने एक बार एक कहानी सुनाए थे कि साकार बाबा किसी को कहीं भेजना चाहते थे, तो एक बहन को बोला कि आप यहाँ जाओगे, तो बाबा अभी तो तुरंत तो नहीं निकल सकते क्योंकि मैंने कपड़े भिगोए हुए हैं। तो बाबा ने फिर उनको ठीक है अच्छा 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 कोई बात नहीं। दूसरी बहन को बोला कि तुम जाओगी अभी अभी निकलोगी, तो हालांकि उसने भी कपड़े भिगोए हुए थे लेकिन उसने हाँ जी कहा, उसने तुरंत ही निचोड़ के कपड़े थैली में डाल दिए, जहाँ जाएंगे वहाँ जाके धुलाई करेंगे या वहाँ जाके सुखाएंगे, लेकिन उस समय वहाँ हाँ जी करके वो चले गए। तो बाबा के दिल पर कौन चढ़ेगा जिसने हाँ जी कहा, और वो जो कपड़े भिगोए हुए बोल के वो रह गए ना। इसी प्रकार दीदी को भी हाँ जी सुनना ही पसंद था, किसी कोई तुरंत रिजेक्ट कर दे या ना कर दे या कोई बहाना बनाए तो दीदी को अच्छा नहीं लगता। तो मैं जैसे क्लास से उतर रहा था तो उन्होंने दीदी ने बुला के रखी, तुमको आज दिल्ली जाना है जी, तो आपको बिस्तर है आपके पास नहीं दीदी, तो ठीक है आपके लिए फलाना भाई बिस्तर तैयार करेगा और ओम प्रकाश भाई आपको स्टेशन पे छोड़ के आएगा, ये टोली वाला भोली दादी आपके लिए टोलियाँ वगैरह सब लेके आ रहे, तुम केवल अपनी तैयारी करके आ जाओ। तो हाँ जी करके गए और वहाँ जाके पता चला कि वो माता जी का ऑपरेशन है, लेकिन वो माता जी कोई ऐसे नहीं थी जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली, और साकार बाबा उनको बहुत रिगार्ड देते थे। राम प्यारी माता, कभी कभी मुरली में भी आता है उनका नाम, राम प्यारी माता करके गुड़गांव के। तो उनका ऑपरेशन था तो सहयोग दिया हमने जितना जो हमें कहा गया, लेकिन मुख्य बात थी कि दीदी चाहती थी कि उस माता को मधुबन की पालना मिले, मधुबन से दीदी ने भेजा है और मधुबन की पालना उनको अनुभव हो, ये उसके लिए मुझे भेजा गया था, और वो चीज़ सफल हुई तो दीदी ने अप्रिशिएट भी किया। और उसके लिए भी कि हाँ जी करने से उसका रिटर्न हमें आज भी महसूस होता है कि हमने दीदी को हाँ जी किया, तो उनकी ब्लेसिंग्स हमको कई बातों में मिली हैं। और भी जो भी कार्य दीदी ने कहा हमने हाँ जी किया, और उस ना तो खैर वैसे भी नहीं करना चाहिए लेकिन हमें उसका रिटर्न मिला है, उसने मैं कहूँगा
जी। वैसे बचपन की बातें चल रही हैं। वैसे अब तो मधुबन में लगभग 40-45 साल पहले का मधुबन और आज का मधुबन, पहले साधन नहीं, और जैसे हमने सुना है कि एक भाई 5-5 डिपार्टमेंट में सेवाएं करता था, तो कुछ मधुबन की पुरानी बातें हैं हमें।
एक्चुअली जो हमारी जो संस्था है वो फैमिली बेस्ड संस्था है, फैमिली इंस्टीट्यूशन है। जैसे दुनिया में होता है ना कि लकी राजेंद्र सन्स, ऐसे फैमिली का होता है ना पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन या तो कंपनी होती है, ऐसे ही हमारा जो संस्था है वो फैमिली बेस्ड है। फर्क केवल इतना है कि पहले फैमिली वाली फीलिंग ज़्यादा थी, अभी संस्था वाली फीलिंग ज़्यादा है। ये थोड़ा सा फर्क मैं समझता हूँ 1990 से शुरुआत हुआ धीरे धीरे, तो वो चीज़ बढ़ गई, क्योंकि उसके कई कारण हैं। आवश्यकता अनुसार ये सब होता है और करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए। तो उस समय जो परिवार था, एक तो परिवार की फीलिंग जैसे मैं कहा ज़्यादा थी, और छोटा परिवार था, हर एक के पास टाइम था, तो टाइम होने के लिए कारण हमारी जो पालना हुई वो उस भाव से हुई। जैसे फर्स्ट टाइम जब मैं मधुबन आया तो मधुबन में लगभग सभी को मालूम था कि अजमेर से कुमार आने वाला है, उसकी ये विशेषताएं हैं, उसको ये पालना देनी है, उसके लिए फलाने जगह रूम रखना है या जो भी, मतलब पहले प्रिपेयर होते थे। और कोई क्लास में तो दीदियां क्लास, दादियां क्लास कराते थे, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई घुमाने ले जाएगा, कोई टोली बनाने सिखाएगा, कोई पूछेगा कि आपका क्या जीवन है, उसके अनुसार हमें कोई एडवाइस करेगा। तो थोड़ा टाइम होता था मधुबन निवासियों के पास, और प्रोफेशनल रूप टच नहीं था अभी तक उस समय। और हम जब समर्पित हुए तो हमें ये, हम उस भाव से आए कि जो सेवा मिलेगी वो सेवा करेंगे। तो जो भाई बहने आए उसमें, उस ऐसे नहीं कि उन्होंने पढ़ाई की है तो उनको ये पर्टिकुलर सेवा मिलेगी, या तो उन्होंने अकाउंट स्टडी किया तो उनको अकाउंट डिपार्टमेंट में सेवा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी आया है जिसको जो भी सेवा मिलेगी, आपने तो सुना होगा आत्म प्रकाश भाई गोल्ड मेडलिस्ट हैं
जी,
टोली बनाते हैं और बहुत प्यार से बनाते हैं, अभी भी तक भी बनाते हैं। तो उन्होंने प्यार से सेवा की और जब उनको सेवा मिली तो हमने उनके साथ भी सेवाएं की। जब हम आए तो सूरज भाई के साथ भी सेवाएं की, भोली दादी के पास सेवाएं की, तो बहुत हर एक से कुछ न कुछ सीखने को भी मिलता था और हर एक कंसर्न फील कराता था कि जैसे वो हमें देना चाहता है, वो हमें जानना चाहता है, हमें प्यार देना चाहता है, हमें दिशा निर्देश देना चाहता है। हर एक जैसे हर एक हमारे जैसे महसूस करता कि आई एम फॉर यू वेलकम। तो ऐसे सेवाओं में भी हम उस समय जब पहली बार भी आए तो भी हमने सेवाएं भी दी और सहयोग भी दिया और सहयोग लिया भी, पालना भी ली, हर एक से छोटे से बड़े से सबसे मिली। जब मैं फर्स्ट टाइम आया तो 18 जनवरी का समय था, तो उस समय मौन जो था पूरा पूर्णतः मौन था, किसी ने भी मुझे ये नहीं पूछा कहाँ से आए हो, क्योंकि पहले से ही मालूम था। तो मैं जैसे ही बस हमें लेके आई पांडवन में, बस से एक भाई ट्रॉली लेके खड़ा था, वो सामान रखा और किस कहीं भी, क्योंकि आवाज़ कहीं था ही नहीं जो हम किसी को, हम भी किसी को पूछें क्या पूछें ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन आवाज़ था ही नहीं कहीं भी। तो तुरंत रामचलक भाई उस समय वो भाई को, वो उन्होंने कोई चिटकी या मेरे से पूछा या कुछ नहीं, या न चिटकी दिया कुछ ऐसा नहीं था, वो भाई को ही इशारे से बताया कि फलानी जगह ले जाओ, जो ट्रॉली में सामान रखा था उन्होंने हमें वहाँ तक पहुँचाया। वहाँ भी साइलेंस था, देखा हमने सब चीज़, उस भाई ने इशारों से पूछा ये जगह है, बाथरूम इधर है, ये सब ऐसा है। तो पूरा मौन का दिन, मैं मानो 18 जनवरी उस दिन नहीं थी लेकिन 16 तारीख को हम आ गए थे, लेकिन 16 तारीख से भी पूरा मौन था उस दिन उस समय। तो जो फीलिंग थी, जो कहते हैं मधुबन मन शीश महल, मधुबन मन सूक्ष्म वतन, वो उस समय पहले बार में ही हमने महसूस किया, क्योंकि इतने लोग नहीं थे, इतने कोई कार्य व्यवहार नहीं था जो आवाज़ हो। तो उस चीज़ की फीलिंग से हम ऑफकोर्स अभी बस मधुबन में रहते हैं तो भी उस चीज़ को हम मिस करते हैं, वो चीज़, वो मधुबन, छोटा मधुबन या अभी बड़ा मधुबन कहा जाता है, सब सुविधाएं बहुत हैं और लेकिन जो साधना इसमें किसी का दोष नहीं है, लेकिन इस समय ऐसा कराता है कि हम साधना पे जितना सहज होते हैं, अभी भी जिनका अभी मतलब हमें खुद को ध्यान रखना पड़ता है पुरुषार्थ के लिए, उस समय नेचुरल था। अभी जैसे मैंने बताया कि हम आए किसी का आवाज़ सुनाई नहीं तो हम किसको बोले, हमें किसी को ये भी नहीं कह सकते कि दीदी ने आपको याद दिया है, इतना तक भी आवाज़ करने को था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सब शांत है, सब मौन में है। तो मतलब खुद को भी आपको लगेगा कि नहीं मैं कैसे बोलूँगा ऐसा, तो वो वातावरण था। तो अब धीरे धीरे फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि परिवार की फीलिंग और संस्था की फीलिंग, अभी आप आते हैं तो आपको नोट कराना पड़ता है पहले, फिर कंप्यूटराइज होता है, देन वहाँ आप आते हैं अटेंडेंस देनी पड़ती है, फिर आपका मोबाइल नंबर ये सब पूछा जाता है, ये सब उस समय नहीं था। तो ये फर्क तो रहा, और मैं समझता हूँ आगे चल के शायद, क्योंकि सिक्योरिटी अभी तो हमें गवर्नमेंट भी बोलते हैं ना कि आप सिक्योरिटी अपना अच्छा और ज़्यादा बढ़ाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं से खतरे के सिग्नल्स मिलते रहते हैं कि विशेष रूप से संस्थाओं पर कोई ना कोई की नज़र रहती है, तो हमें सिक्योरिटी का सोचना पड़ता है। तो बजाय परिवार के हमको थोड़ा सा संस्था का रूप ज़्यादा देखना पड़ता है। प्यार है लेकिन उस प्रकार से हम शो नहीं कर पाते जैसा हम पहले कर पाते।
और विशेष वैसे पुरुषार्थ उस समय पे जो तपस्या की बात आती है, पर्सनल एफर्ट की बात आती है,
पर्सनल एफर्ट तो ये है ना कि आपको जिसको करना है अभी भी कम नहीं है, जब अभी भी विशेष रूप से मैं ज्ञान सरोवर की बात कहूँ, आप यहाँ रहे हुए हैं तो ज्ञान सरोवर में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और बहुत सारे भाई बहन आते हैं। तो ज्ञान सरोवर एक ऐसी जगह है तो जिसको पुरुषार्थ करना हो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, जिसको मस्ती करनी हो उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि पांडव वन छोटा सा है। आप क्लास में नहीं गए तो कहीं दिख जाएंगे तो आपको कोई भी पूछ लेगा पांडव वन क्यों यहाँ बैठे हो, क्लास में क्यों नहीं गए, यहाँ आपको कम लोग पूछते हैं ऐसा। आप क्लास में हैं या नहीं गए, या नहीं गए वहाँ क्यों बैठे हैं, कम लोग पूछते हैं। तो जिनको मस्ती करनी है क्लास अटेंड नहीं करना, उसके लिए भी बहुत सारे का मार्जिन है। और जिसको पुरुषार्थ करना है तो समझो कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो जो भी कॉन्फ्रेंस चल रही है तो इस एरिया में चल रही है, वो एरिया राजऋषि बॉन साइड पूरा एकदम एकांत है, शांत है। तो जिनको शांति में बैठ के तपस्या करनी है तो उस एरिया में बैठ के करते हैं, डोम साइड में आप देखते हैं एकांत है। तो ये तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि मधुबन या किसी बात की नहीं, इस स्वयं का अटेंशन की बात है जो हमारा लक्ष्य है। इसलिए मैं जो कहा ना बचपन में टीके की बात, तो बचपन में से ही हमने जो जीवन में लक्ष्य रखा है ना, जो स्पीड से हम बचपन में डिसीजन लिए हैं या आगे बढ़े हैं, वो हमारा आगे तक चलता है। जो जो तो मधुबन में हम पहली बार आए या मधुबन में हम रहते हैं, अगर मुझे पुरुषार्थ करना है आगे बढ़ना है तो मैं किसी को नहीं देखता, मुझे आगे बढ़ना है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए मधुबन या दीवारें या मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये हमारी अपनी इच्छा शक्ति या तो लक्ष्य हमारा अपना है।
जी ना सर, पुरुषार्थ का मतलब मेरा वहाँ से था जैसे धारणाएं होती है, आजकल कई चीज़ों में हम कंप्रोमाइज करते हैं जो जैसे समय अनुसार, लेकिन आपने मधुबन की जैसे पुराना मधुबन देखा है तो वो जो धारणा और पुरुषार्थ का जो कॉम्बिनेशन होता है
इसमें क्या है, धारणाओं के लिए पहले हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए। कभी कभी एक शब्द आता है अव्यक्त मूल्य में खास करके समझा, तो समझा का मतलब ये नहीं कि आपने जो बाबा ने भाषा बोली वो सेंटेंस आपको समझ में आया कि नहीं आया। समझा का भाव ये होता है कि आप वो अपने जीवन में लाने के लिए समझा माना, आप उसको स्वीकार किए हैं, या आप कई बार आप दो बार तीन बार बोलते हैं समझा कि नहीं, ऐसे आवाज आता है ना समझा कि नहीं, तो समझा माना यू एक्सेप्टेड इट और नॉट। तो समझा माना हमने एक्सेप्ट किया, तो हम बाबा की बातों को एक्सेप्ट करके हमारे जीवन में लाएंगे, ये हमारी अपनी जिम्मेवारी है। ये बाकी आपके भाग्य में नहीं है तो आपको कोई गाइड कर सकता है थोड़ा बहुत, वो भी तब कर सकता है जब आप फ्लेक्सिबल हैं, सुनने की आप में शक्ति है। अगर आप रिजिड हैं, इसलिए बाबा ने जो मोल्ड पावर की बात कही कि मोल्ड पावर माना आप में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप सुनते उसको ग्रहण कर सके, उसके अनुसार अपने आप को कन्वर्ट कर सकते। तो वो तब होता है जब हमें अंडरस्टैंडिंग है, समझ में ना, समझ आ गई, केवल ज्ञान है नहीं, समझ आ गई। समझ आ गए के बाद मोस्टली व्यक्ति अपने आप उसको जीवन में लाता है। अगर आपको वैसे दुनिया में कहते हैं भाई कॉफी पीना, कॉफी में बहुत नुकसान होता है, ये होता है ये होता है, लेकिन वो कॉफी अगर मुझे नुकसान कर रही है, जिस दिन वो मुझे पता चलेगा ना, तो उस दिन कॉफी छूटेगी। ऐसे ही कई धारणाएं ऐसी हैं जिससे मुझे महसूस होना चाहिए कि ये करने से मुझे लॉस होगा या लॉस हो रहा है। वो चीज की जब तक समझ में नहीं आएगी, तब तक भाषण आपके सुनो, मुरली भी सुनो, कोई दीदियां भी क्लास कराएं, शायद ऊपर से जाता है, मैं समझता हूँ। क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों के पास इतना टाइम नहीं है, वो बाबा के बच्चे बन गए हैं, मुरली सुनते हैं, वो भी जैसे कि जैसे हमारे लिए सुन रहे हो, हाँ हाँ मुरली रोज सुनते हैं ना, लेकिन मुरली के ऊपर मनन करके, उसको स्वीकार करके, उस दिन उस जो बाबा ने जो बात कही है, उस दिन उसको कम से कम उस दिन लाएंगे तो आगे चल के सहज धारणा भी हो जाएगी। लेकिन उस चीज को लाना हमारा अपना काम है। इसलिए मैं कहूँगा जिनको समझो, जैसे हमारी धारणा है भाई शौच के बाद स्नान करना, तो बहुत सारे भाई बहनों को ये पता नहीं है, और पता है तो समझते इससे क्या होगा। तो वो चीज़ को समझना जरूरी है कि जब हम इस प्रकार के कार्य के लिए जाते हैं तो पूरी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं, जिसके लिए स्नान करना जरूरी है, है ना। तो कहीं शास्त्रों में कहते हैं कि भाई शौच के बाद पांव धुलाई करना जरूरी है, तो लेकिन हम लोग पूरा स्नान करते हैं तो उससे फायदा होता है ना, हम फ्रेश होते हैं। बाबा कभी कभी बोलते हैं कि मुरली में भी कहते हैं कि जैसे दो जो रॉयल लोग होते हैं दिन में दो बार स्नान करते हैं, तो ऐसे दिन में दो बार मुरली पढ़नी चाहिए। तो इस चीज को मैंने कितना समझा है कि दो बार स्नान करना चाहिए, स्थूल भी और दो बार मुरली पढ़ना चाहिए। अर्थात मुरली सवेरे सुन भी ली हो, लेकिन उसको आपस में रिवाइज करें या कुछ उसके ऊपर चिंतन करें या लिखें, लिखी हुई पॉइंट को रिपीट करें अपने आपस में या स्वयं से, तो अपने को चेकिंग करें। या कई बार ट्रैफिक कंट्रोल क्यों बजता है, कि हम अपने आप को चेक भी कर सकें। या हमने विशेष रूप से गुलजा दादी तो खास कहते हैं कि जब अपन पानी पीते हैं, कोई बोलेगा टाइम नहीं है, लेकिन अपन पानी पीते हैं, वॉशरूम जाते हैं, इतना तो टाइम होता ही, सब करते ही हैं, तो उस समय भी अपन अपने आप को चेक करें कि बीते हुए घंटों में मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, या तो मैं ऐसा काम तो नहीं किया जो नहीं करना चाहिए। तो तुरंत हमारा चेकिंग होगा तो अपन चेंज करना भी सहज होगा। तो ये चीज का हमें खुद जिम्मेवारी लेना पड़ेगा कि मुझे पुरुषार्थ कर आगे बढ़ना है। हम किसी को भी, भाई बहनों को, टीचर को, मैनेजमेंट को, या संस्था को, या वातावरण को, किसी को भी हम रिस्पॉन्सिबिली या तो दोषी नहीं कह सकते। हमें अपने को संभालना है, हमें अपने को आगे बढ़ाना है, हमें खुद लक्ष्य रखना है और लक्ष्य के अनुसार चेक एंड चेंज करना है।
ठीक है सर, आपने गुलजार दादी को याद किया, वैसे आपने दादियों का इंटरव्यू लिया है, चाहे गुलजार दादी हो, जानकी दादी हो, आपने उनके मैंने देखा बहुत, वो जैसे होता है ना 480 क्वालिटी, एक पुरानी जैसे वीडियोस होते हैं, उसमें सिंपल दादी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, सिंपल कॉन्फ्रेंस ऑफिस जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनके जो अनुभव आपने इंटरव्यू लिए, कुछ उसके अनुभव हमें सुनाए।
एक्चुअली जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो कई बार हमें मालूम भी होता है, लेकिन इंटरव्यू इसलिए लिया जाता ताकि औरों को भी इस चीज़ का पता चले। जैसे 30 years back, 40 years back जो इंटरव्यू लिए, अभी आप उनके में हम को चर्चा कर रहे हैं, तो 1990 में जो हमने इंटरव्यू लिया था तो आज यूज हो रहा है, तो हमें भी खुशी होती है। और विशेष रूप से जब हम संतरी दादी से इंटरव्यू लिए थे और वो 20 दिन के बाद ही दादी ने शरीर छोड़ा, तो वो इंटरव्यू एक तरह से विशेष हमारे यादगार रहा कि दादी से हमने पूछा उनके नाम से कि आपका नाम संतरी कैसे पड़ा, तो उन्होंने बहुत प्यार से बोला कि मैं जब ध्यान में जाती थी तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरा चेहरा लाल लाल था और सुंदर तो थी उस उम्र में। तो बाबा ने बोला कि देखो चेहरा देखो इसका जैसे संतरा तो जैसे संतरे का जूस। तो तब से उस दिन से मेरा नाम संतरू संतरू पड़ा और धीरे धीरे संतरी दाद पड़ गया। तो ये चीज हम लोगों को कहाँ मालूम होता है ना। तो इस चीज का कई चीजें और महसूस हुआ कि उनसे जब हमने पूछा कि क्योंकि वो लौकिक में बहुर के रिश्ते में रहे हैं बाबा के, तो हमने उनको पूछा कि पहले आप बाबा को किस रूप में देखते थे। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि आपको मैं सच में बता दूं, मेरे लिए पहले भी वो भगवान थे, बाद में भी भगवान रहे, क्योंकि उनकी चित्र मेरे बेड के सामने रहता था। भले वो सामने नहीं भी होते थे, वो कलकत्ता में होते थे, हम लोग हैदराबाद में होते थे, तो भी अगर मुझे पेट दर्द भी होता है तो मैं उनसे चित्र से भी बात करके उसका दवाई मैं लेती थी। और ये चीज़ मेरे लिए वो पहले भी भगवान थे, अभी भी भगवान, बाद में भी भगवान रहे, अभी भी भगवान हैं ऐसा। तो ये चीज़ का कि बाबा पहले से असाधारण आत्मा रहे, ब्रह्मा बाबा पहले से असाधारण आत्मा रहे, इस चीज़ की हमने इंटरव्यूज़ के रूप में बहुत सारा समझा। और चाहे हमने दादी निर्मल चंदा से पूछा, चाहे संतरी दादी से पूछा, चाहे औरों से भी पूछा कि वो उनका पहला जीवन भी विशेष रहा कोई, भले बाबा कहते। इसलिए मैंने बोला कि हमने ऐसी माँ को भी पाया है तो खास रहा। चंद्रमणि दादी जी तो अपने आप में महान रहे। वो ऐसे तो जब यज्ञ शुरू हुआ तो टीचर रहे, क्योंकि जब बच्चे भी संस्था में रहे, बच्चों का हॉस्टल था, तो उनको पढ़ाने के लिए चंद्रमणि दादी मुख्य टीचर्स रहे। और भी टीचर्स रहे, सती दादी और टीचर रहे हैं, उसमें एक दादी प्रकाशमणि भी थे,
शांतामणि दादी,
दादी शांतामणि भी थे। लेकिन चंद्रमणि दादी जी का बाद में भी जो हमने भी जीवन देखा, उन्होंने जो शिक्षा हमें दी, जैसे 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 गुरुकुल में शिक्षा होती है ना, गुरुकुल में ऐसे नहीं कि बोर्ड पे पढ़ा दिया टीचर ने और आपने सुन लिया या अच्छी बातें बता दी। लेकिन गुरुकुल में ऐसा होता है कि ये काम आज करना है, ऐसे करना है। तो मुझे याद है कि हमारे एक बड़े बहन होते थे जयपुर में, सुकर्मा बहन नाम से, तो उन्होंने एक बार अनुभव सुनाया कि जब वो ट्रेनिंग में आ रहे थे, टीचर्स ट्रेनिंग में, तो उसी ट्रेन में थे जिसमें चंद्रमणि दादी ट्रेनिंग कराने के लिए आ रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो उसी कंपार्टमेंट में जाके दादी को मिल के आते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम उस कंपार्टमेंट में आए दादी से मिलने के लिए। तो उन दिनों में, आजकल तो इतना नहीं है, लेकिन उन दिनों में दो चोटी का फैशन होता था बहनों के लिए। तो हमने दो चोटियाँ की हुई थी ऐसे, जैसे नॉर्मल बहनें करती हैं, करती रहीं उस समय के। तो दादी ने बैग से कंघा निकाला तो बोली तुम्हारी ट्रेनिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, तुम बालों को अभी सिंगल जैसे अभी बहने कर रहे हैं ऐसे बनाओ। तो वो कह रहे हैं कि दादी ने जिस अधिकार से बोला, हमारे पास ये चॉइस नहीं था कि हम बाद में जाके दादी को बोलें दादी हम बाद में कंपार्टमेंट में जाके बोल करेंगे, हम अपने कंघे से कर लेंगे, आप ऐसा क्यों नहीं हो। हमने तुरंत ही वहाँ उसी कंघे से सामने बना के, तो वो ट्रेनिंग मतलब दादी का जो बोल होता था आपको धारणा करने के लिए बाध्य कर दे, या तो कहे कि समझ दे दे वो उस चीज़ की कि आप वो धारणा कर ही लें। तो ये चंद्रमणि दादी की विशेषताएं थी, यहाँ भी रहे हैं। चंद्रमणि दादी जब ज्ञान सरोवर का निर्माण हुआ तो पहले बाप दादा ने उनको ही अंगूठी पहना के दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दादी ने अच्छी तरह से निभाया भी। और उससे पहले भी हम चंद्रमणि दादी को जानते रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि इंटरव्यू लिया तो दादी उस समय भी जो इंटरव्यू लिया, तो उस समय इंटरव्यू में पूछा कि आप पंजाब जैसे जगह में रहते हैं, तो पंजाब में उस समय बहुत सारा कुछ चलता रहा था,
खालिस्तान
खालिस्तान और सरदारों का मतलब बहुत कुछ इस प्रकार का चलता था, जिसको आज हम आतंकवाद शब्द देते हैं, लेकिन उस समय इस प्रकार के झगड़े हुआ करते थे, तो आपको डर नहीं लगता? तो दादी ने कहा कि डर उनको लगता है जो नफरत करते हैं ना, समझो हम बोलेंगे ये आतंकवादी है, ये सरदार है, कि ये हिंदू है। जब हम उस भाव का सोचते हैं तो हमें उनसे, जब हमें ही मालूम है कि ये भी हमारे भाई हैं, तो कभी कभी कोई आ भी जाते हैं तो हम उनको भाई की तरह जैसे औरों को वेलकम करते हैं तो उनको भी वैसे ही वेलकम करते हैं। और दादी ने एक दो घटनाएं उसमें सुनाई भी, मैं यहाँ उसका वर्णन नहीं करूँगा, लेकिन दादी ने वो सुनाया भी किस प्रकार से एक कोई CBI का व्यक्ति आता रहा, कितने समय से वो कोर्स करता रहा, मुरली सुनता रहा, फाइनली जब उसका ट्रांसफर होने को आया तब उसने बताया कि मैं यहाँ आने का लक्ष्य ये था कि मैं यहाँ संस्था को चेक करने के लिए आया था। तो दादी ने कहा कि हम तो सबको जिस प्रकार से पालना दे रहे थे उनको भी दिया, और इस प्रकार के और भी बातें बाद में और बहनों ने भी सुनाई हैं कि कैसे उनके पास इस प्रकार के लोग आए तो उन्होंने उनको वेलकम किया, उनको कढ़ा प्रसाद, मानो उस पंजाब साइड में हलवा जो बना के प्रसाद उस रूप में देते हैं तो उसको कढ़ा प्रसाद करते हैं, तो उनको वो बना के खिलाया और जो आए थे गलत भावना से वो शुद्ध भावना रखे, बल्कि ये निश्चिंत करके गए कि हम आपके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम करेंगे। तो कई चीज़ें ऐसी थीं, लेकिन नहीं उन्होंने ये भी कहा, जैसे अब एक बाप दादा से पूछा गया था कि उस समय वहाँ ये कहते हैं कि भाई आपके जो साइन बोर्ड हों वो पंजाबी में होने चाहिए, तो बाप दादा ने भी कहा कि इसमें अपने को क्या नुकसान है, अगर साइन बोर्ड पंजाबी लैंग्वेज में है तो हिंदी में है पंजाबी में, और वहाँ तो पंजाबी अच्छी पढ़ सकते हैं तो पंजाबी में चेंज करने में अपने को कोई नुकसान नहीं। तो इस प्रकार के चंद्रमणि दादी जी की सबके प्रति शुभ भावना, इतना ही प्यार देना, लेकिन उतना ही अधिकार से शिक्षा इस प्रकार देना कि सामने वाले को अपनापन भी लगे और करने के लिए बाध्य भी हो जाए, तो ये चंद्रमणि दादी जी की विशेषता रही है। गुलजार दादी तो आपने देखा ही है सपने लगभग कि इतने हल्के रहे हैं कि उन्होंने को बाबा ने ये जो विशेषताएं दी पद्रामणि उनके रथ को चुना, क्योंकि शुरू से ही लाइट रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्यों क्या कि कैसे में नहीं गए हैं, जो सामने आया उसको प्यार से किया और बाबा ने जो कराया उसको प्यार से किया और स्वीकार किया, वो बहुत लाइट रहते हैं, किसी में भी ज़्यादा उसमें नहीं जाते थे, तो ये उनकी विशेषता रही। दादी के लिए तो आप सबने देखा भी है, उनकी कहानियाँ भी बहुत सुनी होंगी, हर साल जब उनका दिवस आता है तो उनके बारे में सभी कुछ बताते भी हैं, हमने भी उनको देखा अच्छी तरह से, उनकी पालना भी ली, और जैसे मैंने बताया कि दादी का सबके प्रति विशेष रूप से प्यार रहा, किसी को भी उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, सबको प्यार दिया और शुभ भावना रही और नेचुरल जीवन उन्होंने जीना सिखाया। और जैसे एक अगर जयंती बहन का मैं सुनाता हूँ, उन्होंने थोड़े समय पहले सुनाया, लेकिन हमने मधुबन में जब दादी विदेश से लौटे थे वहाँ से, तो उस समय सुनाया कि एक जगह कहीं तो गए, तो बहन तो जॉब करने चली जाती थी, उसको जॉब छोड़ नहीं सकती थी, उसे ऐसे नहीं कर सकती, लेकिन हम लोग सेंटर पे अकेले रहे, तो जयंती बहन थी, मोहिनी बहन थे, दादी थे, तो सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तो जयंती बहन लेट गई, उनको नींद आ गई, लेकिन मोहिनी बहन दादी को नींद नहीं आई, तो उन्होंने सोचा चलो कुछ बनाते हैं। अभी किचन में गए तो वहाँ तो रोटी बनाने का ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं वहाँ, क्योंकि वो तो रोटी बनाते नहीं थे, ब्रेड बनाते थे। तो मोहिनी बहन उस समय बहुत प्यार से हंसी में सुनाते थे, अभी जयंती बहन ने उनको रिपीट किया, लेकिन जिस प्रकार से मोहिनी बहन ने सुनाया कि एक जो क्या क्या है किचन में वो देखने के लिए, एक टेबल रखा, टेबल के ऊपर भी दादी चढ़े, फिर भी कोई कोई हाथ नहीं पहुंच रहा था, उसके ऊपर एक कनस्तर रखा, उस कनस्तर के ऊपर दादी चढ़े, फिर देखा क्या क्या है, फिर आटे का कनस्तर नीचे उतारा और उस आटा गूंदा, आटा गूंदने के बाद देखा तो बेलन तो है नहीं, फिर एक बोतल पड़ी थी कांच की, उसी से बेला रोटी को और किसी प्रकार से रोटी बनाई और सब्जी बनाई, और हम आपस में तीनों ने चारों ने उनकी बहन के लिए भी रखा और आपस में खाए। तो इस प्रकार के नेचुरल जीवन है। एक दो फोटोज भी हमने देखे हैं जहाँ दादी सीढ़ी पकड़ के खड़े हैं और बहन ऊपर कर्टिन लगा रही हैं, क्योंकि उसी दिन तो फंक्शन है, तो बहुत तो स्टूडेंट वहाँ है नहीं जो मदद करने आए, तो बहन कर्टिन लगा रही हैं और वेंडी बहन हैं वो कर्टेन लगा रही है और दादी सीढ़ी पकड़ के खड़े हैं, तो आपस में मिलके कार्य किया। दादी उस समय भी हेड थे, ऐसे नहीं कि दादी कोई छोटे थे या तो पद में छोटे थे या उम्र में छोटे थे, लेकिन दादी उस समय भी ओवर 50 थे, लेकिन वो दादी ने उतना नेचुरल जीवन जिया भी। और हमें ये कहा कि हम सब आपस में ही हैं, ऐसे नहीं कि दादी माना दूरबाज, ऐसे नहीं, टच मी नॉट वाला नहीं था। हम दादी के साथ रहे, जैसे भाई बहन या माँ बाप के पास में बच्चे रहते हैं ऐसे रहे, और दादियों ने भी हमें उतनी प्रकार से पालना दी।
थैंक यू भाई साहब, टाइम पूरा हो गया है। बहुत सारे, जैसे हम मधुबन में रहते हैं लेकिन बहुत सारे अनुभव भाई साहब मेरे को भी पहली बार सुनने को मिला, तो इतने सुंदर अनुभव शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अच्छा, थैंक यू। एक्चुअली ये टॉपिक क्यों रखा गया शायद और गगनेंद्र ने, कि हम जब बचपन में आए हैं अर्थात बाबा के बने हैं, तो जिस मंगोत्साह से हमने शुरुआत की है ब्राह्मण जीवन की और समझा है, क्योंकि ब्राह्मण बनते ही बहुत सारी बातों को हमने डिसाइड किया होगा ना, उस समय मुश्किल भी लगा होगा बॉयज बॉय, समझो मेरे हैं, मैं अपने लिए कहूँ तो तुरंत बाबा का बनना है, तो प्राय मान लो लौकिक वाले हैं उनसे पहले तो स्वीकृति नहीं होती, उनको कन्विंस करना किसी प्रकार से, या तो फिर मैरिज करनी है नहीं करनी है, इस प्रकार के लौकिक में तो क्या है ये डिसीजन हम लोग 20-25 साल की एज के बाद करते हैं, लेकिन अलौकिक जीवन लेते ही बचपन में ही बहुत सारे डिसीजन लिए हमने उमंग उत्साह में आके, हम उनको उसी भाव से लेते हुए आगे बढ़ते रहे जो हमने बचपन में जिस उमंग उत्साह से हम चले, उससे बल्कि कोई ये कहे कि हम आगे मैंने इतने साल हो गए, तो मान लो जैसे भाई ने बोला कि 40 साल हो गए, तो मुझे ये कहने में अच्छा लगना चाहिए कि 40 साल हो गए मैं ना हमने उतनी उन्नति की होगी, ऐसे नहीं कि 40 साल पहले तो हम अच्छे थे अभी हम ढीले हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये लक्ष्य जो टॉपिक रखा है उसका लक्ष्य यही है कि हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, हमारी आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत हुई हैं और हो रही हैं, या उस पर हमारा ध्यान है विशेष रूप से, क्योंकि आध्यात्मिक संस्था में हैं, आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, तो आध्यात्मिक शक्तियाँ हमारे पास में आ रही हैं और बाबा हमारे से करवा रहा है, या ये शक्ति टाइम पर हमें मदद कर रही है, ये चीज़ की महसूसता हमें आनी चाहिए और उसके लिए स्वयं को टाइम देना चाहिए। थैंक यू।